स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि इस बारस अनुवेक्षा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कहते हैं, संसार अनुप्रेक्षा, एक शरीर छोड़कर जीव दूसरे नए शरीरों को धारण करता है, बार बार पुराने शरीर छोड़ता है, नए शरीर धारण कर लेता है। इस तरह अनेक शरीरों में जो भटकता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसका नाम है संसार। और वो जीव जो होता है मिथ्यात्व और कषायों से युक्त होता है। मिथ्यात्व यानी भ्रम, भ्रांति, और कषाय यानी राग और द्वेष। तो इनसे युक्त जो जीव है वो संसार में भटकता रहता है, एक शरीर छोड़कर दूसरे नए शरीर धारण करता रहता है। पाप के उदय से नरक चला जाता है, बहुत दुख सहता है, पांच प्रकार के दुख, और संसार के अन्य दुखों से विलक्षण अलग प्रकार के पांच प्रकार के दुखों का चित्रण करते हुए आचार्य श्री कहते हैं, असुर उनको लड़ाते भिड़ाते हैं, उनके शरीर में कई प्रकार की व्याधियां होती हैं, उनको मानसिक संताप भी सतत पीड़ित करता रहता है, और वहां के क्षेत्र संबंधी दुख भी उनको सताते हैं, और आपस में लड़ने भिड़ने वाले बेनारक एक दूसरे को भी कष्ट देते रहते हैं। शरीर का तिल तिल के बराबर खंडन कर डालते हैं, और फिर उसको भी और भेद डालते हैं, फोड़ डालते हैं, और वज्राग्नि द्वारा उनको काढ़े के समान खौलाते हैं, और अपवित्र गड्ढों में, कुंडों में उनको निक्षिप्त कर देते हैं, डाल देते हैं। इत्यादि दुख जो एक समय में नरक में जीव सहता है, उसका पूर्ण वर्णन करने में हजार जीवों भी असमर्थ है। क्षेत्र के स्वभाव से वहां सब कुछ अशुभ परिणत होता है, और निरंतर एक दूसरे के प्रति वो कुपित रहते हैं। जो पिछले जन्म में सुजन रहा, अपने लिए अच्छा मित्र रहा, वह वहां पर मारता है, अति कुपित रहता है। इस तरह तीव्र कर्म के फल को बहुत समय तक भोगते हैं। ये सब दृष्टांत समझाने के लिए, सारांश उसका यही है कि वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पाप का फल भोगने के लिए प्रचंड पाप कमाने वाले जीव पैदा होते हैं और अनेक प्रकार से दुखी होते हैं। वहाँ से निकलकर तिर्यंचों में, बहुत सारे भेद हैं तिर्यंचों के, उन तिर्यंचों में जन्म लेता है, और तिर्यंच गति में माँ के गर्भ में भी कई बार उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई बकरी है, उसके गर्भ में कोई बच्चा है, मारने वाला उसका भी वध कर डालता है, उसको दया नहीं आती, कर्म का परिणाम है। और दूसरे जानवर भी एक जानवर को खा जाते हैं, दुष्ट मनुष्य उनकी जान ले लेते हैं, सब तरफ से उसको डर लगा रहता है, और भयंकर खतरे और भयंकर दुखों को वह जानवर सहन करता है। एक दूसरे का भक्षण करने वाले वे तिर्यंच, वे जानवर, वे पशु, पक्षी भी होते हैं ऐसे कई, एक शिकरा नाम का पक्षी होता है, वो दूसरे पक्षियों को पकड़कर खा लेता है, और वो जैसे ही आता है कहीं पर, उसकी आवाज सुनकर बाकी सब पक्षी घबरा जाते हैं। फाल्कन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो जब खाते हैं वो एक दूसरे को, तो बहुत दुख होता है उनको, तीव्र दुख, और ज्यादा क्या कहना, तिर्यंच गति में तो कुतिया खुद अपने बच्चे को खा जाती है, जहां माँ भी बच्चे को खा जाए तो वहां बच्चे को बचाने वाला कौन हो सकता है? और जब तीव्र प्यास लगती है, तीव्र भूख लगती है, तब भी उनको तीव्र दुख की प्राप्ति होती है। खाली पेट है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। मालिक जब पिला दे पानी, तब वो प्यासा बैल अपनी प्यास बुझा पाता है, और कोई चारा डाल दे तब खाने को मिलता है उसको, नहीं तो मुंह बंधा है किसी का तो फिर खा भी नहीं सकता, बहुत दुख सहन करता है। इस प्रकार तिर्यंचयोनी में भयंकर दुखों को सहन करता हुआ वहां से निकलकर लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होता है, अंतर मुहूर्त में वो भी अपनी आयु पूर्ण कर जाता है। गर्भ में उत्पन्न होता है तो गर्भ में लंबे समय तक शरीर सिकुड़ा रहता है, हाथ पांव पसार नहीं सकता, तो उसकी तकलीफ भी उसको झेलनी पड़ती है। और जन्म के समय बड़े कष्ट के साथ, बड़ी वेदना के साथ वो पैदा होता है। और बच्चे को अगर माँ बाप त्याग दें तो दूसरों की जूठन पर वृद्धि को प्राप्त होता है, बहुत दुखी रहता है और भिखारी तक बन जाता है, और मांग मांग कर बड़ी मुश्किल से अपना समय बिताता है, पेट भर पाता है। यह मनुष्य पाप के कारण, दुष्कर्म के प्रभाव से क्या नहीं बन जाता, भिखारी बन जाता है, नौकर बन जाता है, और अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर कभी कोढ़ी बन जाता है, कभी दुर्घटनाग्रस्त होकर लूला लंगड़ा बन जाता है, कभी पोलियो बीमारी का शिकार बनकर अपंग हो जाता है, कभी आँखों के कष्ट से अंधा भी हो जाता है, कभी काना हो जाता है, कभी मोतियाबिंद का शिकार हो जाता है। कितने कितने प्रकार के कष्ट ये जीव अपने ही पाप के फलस्वरूप प्राप्त करता है, लेकिन पाप को छोड़ता नहीं है, पाप का फल भोगते हुए भी पुनः पाप कमाता है, बुरे कामों में उसका मन लगा रहता है, वहां से वो हटता नहीं है। गरीब है तो वहां भगवान का नाम लेने के बजाय बैठे बैठे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको लकड़ी की काड़ी से तंग करेगा, मारेगा, या फिर किसी जानवर को परेशान करेगा, कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे किसी दूसरे प्राणी को तकलीफ होती है, अहिंसा की ओर उसकी मति नहीं जाती, तो फिर पाप कमा लेता है। अथवा कहीं व्यसनों में लगा जाए, शराब पिएगा, दिन भर खून पसीना एक करके जो कमाई की, परिवार बड़ी मुश्किल से पल रहा है, लेकिन शराब पी करके ये अपने धन को बर्बाद करता है। फिर आचार्य कहते हैं कि कोई बिरला सम्यक दृष्टि जीव व्रतों को धारण करके पुण्य कमाता है, बाकी तो दुनिया सारी पापों में ही लगी रहती है, और शांत भावों को भाता है, अपनी निंदा और अपनी गर्हा करता रहता है। अपनी निंदा यानी कोई गलती हो जाने पर वो अंदर ही अंदर उसको स्वीकार करता है कि गलत था, मुझे नहीं करना था, यह आत्मनिंदा हो गई, और फिर गुरु के पास जाकर के बता दे कि गुरुवर ऐसी त्रुटि मुझसे हो गई है, क्या करूं, मैं कितना भी अच्छा करना चाहता हूं लेकिन मन कभी ऐसा बिगड़ जाता है कि मैं गलत कदम उठा लेता हूं, मुझसे कुछ अपराध हो जाते हैं, आप ही मुझे पार लगा सकते हो, इस समय मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं विकारी हूं, और विकारी मनुष्य बिना पवित्र समागम के कैसे पवित्र हो सकता है? घर बैठे बैठे सुख सुविधाओं में अगर लोग पापों से मुक्त हो जाते तो फिर भारत देश में गुरु का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। हे गुरुवर, आपके ही आशीर्वाद से, आपकी ही कृपा से मेरा कल्याण होगा, इसलिए आप मुझे विकारों से दूर हटाइए। और भक्ति से ही विकार दूर होते हैं, ज्ञान से विकार नहीं मिटते और क्रियाओं से नहीं मिटते, वो तो एक भक्ति में वो शक्ति है कि जिससे निर्विकार होता है मन। क्रियाएं मात्र करने से कुछ नहीं होता, यद्यपि क्रियाएं करना भी अनिवार्य है, क्रियाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। नीरस भोजन करने मात्र से मन शांत नहीं होता, उसके साथ में और भी कुछ भावनाएं आवश्यक है। और मूल तो सबसे सुगम भाव जो है वो भक्ति है, बाकी तो ज्ञान वैराग्य बहुत सबके बस के नहीं होते, इसलिए भक्ति में मन को स्थिर करना चाहिए। जब कभी ज़्यादा मन अशांत हो जाए तो बैठ जाओ भगवान के सामने, घड़ी को बाहर रख दो कहीं, नारायण राव को दे दो, क्या नाम है उनका, उनको दे दो कि भाई हम आके ले लेंगे, क्या ज़रूरत है यहाँ लाकर 50 बार घड़ी देखने की। जो समय को देखता है उसको समय सार नहीं मिल सकता। जब समय और स्थान गायब हो जाते हैं तब द्रव्य और भाव की शुद्धि प्रकट होती है, यानी जो काल और क्षेत्र में अटका है वो द्रव्य और भाव की पवित्रता को कैसे प्राप्त कर सकता है। काल क्षेत्र का अपनी सीमा तक महत्व है, उसके आगे भी उसको पकड़ कर चलने से आप पीछे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ध्यान के समय तो द्रव्य और भाव पर ही अपना मन स्थिर होना चाहिए, समय का ध्यान नहीं रखना चाहिए। इसलिए भगवान की आराधना कर, मन बहुत अशांत हो तो फिर भगवान के पास आकर बैठ जाओ और फिर भगवान से कहो कि भगवान मेरा मन वातावरण के कारण तो कम, लेकिन अपनी इच्छाओं के कारण अधिक परेशान है, मैं जो चाहता हूं वो होता नहीं है, जो होता है वो चाहता नहीं हूं, यही तो दुख का कारण है, या इसके सिवा और कोई है क्या दुख का कारण। आप देखो एकदम छोटा सा सूत्र है ये, जो चाहता हूं वो होता नहीं है, जो होता है वो चाहता नहीं हूं, इसीलिए तो दुखी हूं। तो सबसे सुखी होने का तरीका, एक बहुत सरल तरीका ये है, उसको प्रैक्टिकली करना सरल नहीं है लेकिन तरीका बता रहे हैं, तरीका ये है कि जो होता है उसको चाहने लगो, खत्म खेल। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो चाहते नहीं, इसलिए दुखी हैं, तो सुखी कैसे होंगे। जो होता है उसको चाहने लगो, खेल खत्म। ज्यादा अपेक्षाओं के कारण मन हमेशा परेशान होता है। अब जैसे मान लो आपने इच्छा की, ये कोई कायदा नहीं है कि आपने इच्छा की इसलिए पूरी हो, संभव है ना हो, कई आशाएं निराशा में बदलती हैं, तो निराशा पर लोग रोते हैं, जरूरत है आशा पर हंसने की, नहीं आया समझ में। आशा पर हंसो तो दुख नहीं होगा, निराशा पर रोने से नियम से दुख होगा, इसलिए आशा ही क्यों करना, क्योंकि दुनिया जो चलती है अपनी इच्छाओं से थोड़ी चलती है, उसका एक अलग क्रम है, वही निपाय निमित्त उपादान वाला जो क्रम है, सारे कार्य चलते रहते हैं। तो आकुलित होने से अगर बचना हो तो फिर ऐसे कुछ विचार हैं तो भगवान से कहो कि भगवान क्या करें, मेरे अंदर इतनी कषाय आती है कि मुझे राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष होते हैं तो फिर मैं कुछ चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उसके कारण जब वैसा नहीं हो पाता जैसे मेरी तमन्ना है तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे लगता है कि मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ यहां दुनिया में। तो वहां से भगवान की आवाज आएगी कि बेटे सबके अनुसार सब कुछ कैसे संभव है, क्योंकि 50 लोग और 50 लोगों के 50 विचार, क्या सारी चीजें एक साथ हो जाएगी, कोई एकाध घटना हो सकती है कभी। ये जरूर है कि जब पुण्य का उदय रहता है तो जो मन में विचार आते हैं उसकी पूर्ति भी होती दिखती है, वास्तव में पूर्ति का कारण कुछ अलग है, लेकिन वो संयोग ऐसा बन जाता है अपने पुण्य के उदय से कि वांछाएं पूर्ण होती है तो अपन और वांछा करने लग जाते, आदत बिगड़ती है अपनी। अगर बच्चा आइसक्रीम मांगे और तुरंत आइसक्रीम मिले उसको तो फिर दोबारा मांगेगा, फिर मिले तो तिबारा मांगेगा, ऐसे वो आदत बिगड़ जाएगी उसकी, फिर उसको व्यसन हो जाएगा। अपन सब इस संसार में इच्छा व्यसनी है, आदत पड़ी, बुरी आदत, व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत। तो इच्छा की ऐसी आदत, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इसी के कारण आकुलता है। और ये आकुलता गृहस्थों में भी हो सकती है, साधुओं में भी हो सकती है, क्योंकि साधु भी चाहते हैं कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए। अब दुनिया कैसी होगी ये अपने हाथ में नहीं है, फिर भी वो इच्छा होती है, इसलिए कभी ज्यादा तीव्र इच्छा करे साधु तो साधु को भी दुख होता है ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर भगवान के पास आते हैं, फिर शास्त्रों की सरस्वती की शरण में जाते हैं, फिर गुरु की वाणी सुनते हैं, तब समझ में आता है कि नहीं, संसार का एक अलग क्रम है, वो अनादि निधन है, अनादिकाल से एक परमाणु है, उस परमाणुओं के रंग बदलते हैं, स्कंद के रूप में परिणाम होता है, सब चेंजेस चालू रहते हैं, परिवर्तन हमेशा चलता रहता है और वो अपनी गति से चलता है। कौन उसका मालिक है? कोई नहीं। फिर मैं इच्छा करता हूं कि ऐसा होना चाहिए और कभी पुण्य से वो इच्छा पूर्ण होती है तो फिर मुझे लगता है कि कंट्रोल तो है मेरे पास क्या, तो अपने आप को कंट्रोलर मानता है। कोई ईश्वर को कंट्रोलर मानता है, कोई अपने आप को कंट्रोलर मानता है, कोई भाग्य को कंट्रोलर मानता है। तो इस प्रकार ये कंट्रोलर वाला जो सिद्धांत है उसी में त्रुटि हो रही है और उसी के कारण परेशानियां हैं। तो अगर अपन उस बात को छोड़ दें कि नहीं मैं कर्ता धर्ता नहीं हूं, निमित्त मात्र हो सकता हूं, वो भी उसमें भी कंपल्शन नहीं है, अनिवार्यता नहीं है कि मेरे निमित्त से ये काम हो ही जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं। आदिनाथ भगवान के निमित्त से भी मारीच का कुछ भी नहीं हो सका, कहां आदि तीर्थंकर आदि ब्रह्मा, जब उनके कारण वो नहीं सुधरा तो अपने कारण क्या होगा, ये सोचने की बात है। बस हो जाए तो अच्छा है, वो तो पुण्य की बात है, योग संयोग की बात है, लेकिन अहंकार में कभी नहीं पड़ना चाहिए, उस अहंकार से ही दुख होता है। तो कोई बिरला सम्यक दृष्टि जीव व्रतों से युक्त होकर पुण्य कमा लेता है और शांत भावों से सहित रहता हुआ वो अपनी त्रुटियों पर विचार करता है कि देखो गलतियां तो हो रही है, और गरहा भी करता है, गुरुओं के साक्षी में जाकर के बोलता है कि गुरुवर ऐसी त्रुटि मुझसे हो रही है, मुझे क्रोध ज्यादा आता है। वहां जाकर छल कपट नहीं, वैद्य के सामने, मां के सामने और गुरु के सामने कभी कपट नहीं करना, क्योंकि इन तीन के सामने किया हुआ कपट अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम होता है। फिर आचार्य कहते हैं कि जो पुण्यवान है, जो बहुत पुण्य लेकर के आए हैं, उनके जीवन में भी कभी किसी रिश्तेदार का मरण हो जाता है, कभी काफी संपत्ति है लेकिन चोरियां हो जाती है, कभी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कभी इष्टजनों का वियोग हो जाता है, बिछड़न हो जाती है। खूब ठाट से जी रहे हैं, बड़े पुण्यशाली हैं, लेकिन फिर भी ऐसी नौबत आ गई, डाइवोर्स हो गया, इसके पास भी पैसे की कमी नहीं, उसके पास भी पैसे की कमी नहीं, दोनों अलग हो गए। तो पुण्य का उदय तो है, पुण्य तो लेकर आए हैं, लेकिन ऐसी कुछ बातें वहां पर भी उत्पन्न हो जाती है, अथवा बच्चे का अपहरण भी हो जाता है कभी, इष्ट वियोग, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बच्चे का अपहरण हो गया, अब क्या करोगे, 10 लाख 5 दिन के अंदर फलाने चौराहे के पास रात को 11:30 बजे अगर नहीं पहुंचाओगे तो बच्चा घर नहीं पहुंचेगा, ये स्थितियां हैं। अनिष्ट का संयोग भी होता है, जो अपन नहीं चाहते वो अपने सामने आ जाता है। दृष्टांत एक दे दिया कि भरत नहीं चाहता था कि कोई मेरे चक्रवर्तित्व में रोड़ा बने, लेकिन बाहुबली सामने खड़े हो गए, उनके छोटे भाई। और इतिहास का सबसे पहला युद्ध इन दो भाइयों का युद्ध था। उसके पहले तो भोग भूमि थी और कभी ऐसा प्रसंग नहीं आया था कि युद्ध हो, लेकिन अब दो भाइयों में युद्ध होता है। और युद्ध में आश्चर्य की बात यह हुई, तिलोय पंडित्ति में आता है कि हुंडाव सर्पिणी काल में चक्रवर्ती का भी मान भंग हो सकता है, और हुआ है। तो जब बाहुबली के साथ युद्ध होता है तो तीन युद्धों में तो भरत परास्त हो जाते हैं और अपना अंतिम अस्त्र चक्र रत्न बाहुबली पर छोड़ देते हैं। कौन सी हिंसा है? संकल्पी हिंसा की विरोधी या आरंभी? उद्योग धंधे तो थे नहीं उनके पास, वो क्षत्रिय सम्राट थे, चक्र चलाया उन्होंने। उस समय सम्यक दृष्टि थी कि मिथ्या दृष्टि? भाई के ऊपर चक्र चलाने वाले, एक ललितपुर के पंडित कहते थे कि मिथ्या दृष्टि, लेकिन आगम कहता है कि सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले जीव का सम्यक तो छूटता नहीं है, वह आजीवन सम्यक दृष्टि रहते हैं, मिथ्या दृष्टि होने का प्रश्न ही नहीं। दोनों भाई सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए थे और पूर्व काल में, पूर्व जन्म में, मनुष्य जीवन में महामुनि रह चुके, लेकिन यहां पर ऐसा कषाय भाव आ गया तो कौन सा गुणस्थान रहा होगा उस समय? मिथ्यात्व तो नहीं, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि से सब। और असंयम कहो तो भी अड़चन आती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भरत व्रती था, दिग्विजय के पहले वो भगवान की पूजा करने गया था, याद है? तीन समाचार आए थे भरत के पास कि आपके पिता धर्म तीर्थंकर ऋषभदेव महाराज को 1000 वर्ष तपश्चरण करने के उपरांत पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञानी हो गए, वो सर्वज्ञ बन गया। दूसरा समाचार क्या है? आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। तीसरा समाचार, रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। तो भरत कहां गया सबसे पहले? भगवान के पास। और जब भगवान के पास गए पहली बार, भाइयों को लेकर के गए थे, तो उनसे जो छोटे भाई थे, भरत को पिताश्री ने राजनीति सिखाई थी, बाहुबली को युद्ध कला सिखाई थी, ब्राह्मी सुंदरी को लिपि और अंक विद्या सिखाई थी, और वृषभसेन को संगीत कला सिखाई थी। 72 कलाएं होती है पुरुष की और 64 होती है नारियों की। तो 72 कलाओं में संगीत विद्या की शिक्षा स्वयं ऋषभदेव महाराज ने वृषभसेन नामक अपने पुत्र को दी थी। दो रानियां थी उनकी, दो रानियों में एक रानी छोटी वाली जो रानी थी सुनंदा, उनके पुत्र का नाम बाहुबली और बेटी का नाम सुंदरी। एक नाम और है कुमारी, सुंदरी का दूसरा नाम कुमारी भी है। और जो बड़ी रानी थी जिनको नंदा कहते हैं लोग, उनका नाम यशस्वती था। तो उनके भरत आदि पुत्र थे, और फिर एक पुत्री जो थी वो ब्राह्मी नाम से विख्यात थी, जो गणिनी आर्यिका थी वृषभदेव महाराज जी के संग में, समवसरण में। और आदि पुराण में तो उल्लेख है कि देवताओं के द्वारा वो पूजित थी, वहां देवताओं के द्वारा पूजित थी। और जो ऋषभसेन थे वो ऋषभदेव महाराज के प्रथम गणधर थे, नमो वृषभ सेनादि गौतमांत गणेशिने मूलोत्तर गुणाध्याय सर्वस्मै मुनये नमः। कातंत्र रूपमाला के मंगलाचरण में आता है कि वृषभ सेन को आदि लेकर गौतम गणधर पर्यंत जितने जितने मुख्य गणधर हैं सभी तीर्थंकरों के, उन सबको मेरा नमस्कार है। और मूल उत्तर गुणों के धारक अन्य सभी मुनिराजों को भी मेरा नमस्कार है। वंदामहे त्रिसंख्यो ने नव कोटि मुनीश्वरान, ढाई द्वीप के 3.9 करोड़ सब मुनीश्वरों को हमारी वंदना है। तो वृषभ सेन जो थे वो गणधर हो गए, और उसके बाद फिर भरत जब यहां आया वापस, और वापस आकर के दिग्विजय का विचार करता है, चक्र रत्न की पूजा की, फिर पुत्र रत्न का चेहरा देखा, और फिर दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। 60,000 वर्ष लगे दिग्विजय में, बहुत लंबी उम्र होती थी उस जमाने में, पिता के बराबर उम्र मिली थी भरत को। तो दिग्विजय के बाद जब अयोध्या लौटने लगे तो फिर सामने एक व्यवधान आ गया, चक्र ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, चक्र रुक गया। तब निमित्त ज्ञानी पुरोहित ने कहा कि किसी पर विजय अभी शेष है, आप पूर्ण विजेता होते तो चक्र भीतर चला जाता, लेकिन चक्र रुकने का अर्थ यह है कि अभी कोई बाकी है। तो सब छानबीन करी तो पता चला कि इनके जो भाई थे, बाकी भाई, उन्होंने इनके चक्रवर्तित्व को या बड़े राजा होने का जो सम्मान है वो स्वीकार नहीं किया है। तो उन भाइयों के पास समाचार गए कि चक्रवर्ती अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं, आप उनको चक्रवर्ती स्वीकार कर लीजिए, तो चक्ररत्न अंदर चला जाएगा। उन भाइयों को लगा कि देखो पिता हम सबके लिए राज्य बांट करके चले गए, और हमारे बड़े भाई चक्रवर्ती भरत, अब हमें भी उस राजनीति के तहत बस ऐसा कुछ विचार करते हुए उनको विरक्ति हुई, और उनने कहा कि हम तो पिता के पास जा रहे हैं, और वो सारे वहां चले गए और उनने संन्यास अंगीकार कर लिया। लेकिन उन सब भाइयों में एक भाई ऐसा था जो संन्यास का विचार उस समय नहीं करता, और जवाब भेजता है कि मुझे पिता ने पोदनपुर का राज्य दिया है, और बड़े भाई भरत के चरणों में मेरा प्रणाम हो, पर जिसने तीर्थंकर के सामने मस्तक टेका है वो चक्रवर्ती के सामने नहीं झुक सकता। अगर आप चक्रवर्ती के रूप में मुझे झुकाना चाहते हैं तो पहले युद्ध में मुझे पराजित कीजिए और फिर झुकाइए।